हेलो ललस, आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की, जो कि आपके सीनियर सेकेंडरी बायोलॉजी टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर है। आज हम उन रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे जिसको हम आए दिन अपनी एक्टिविटीज के दौरान इसको डिप्लीट करते जा रहे हैं। हम समझेंगे कि ये नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं और किस तरीके से हम इनको कंजर्व कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज, और क्या कारण है कि व्हाट आर द रीजंस की डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड व्हाट काइंड ऑफ मेजर वी कैन टेक फॉर दिस टू सेव दिस एनवायरनमेंट और दीज रिसोर्सेज। सर, आप मुझे बताएंगे कि ये नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं?
देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज से हमारा तात्पर्य ऐसे संसाधनों से जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती, तथा ये प्रकृति के ये स्रोत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन दयनीय है, जिनके अभाव में जीवन जीना जीवन बिल्कुल नामुमकिन है, तथा ये प्राकृतिक संसाधन प्रत्येक जैविक या एक प्राणी के लिए जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे ये मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, या पेड़ पौधे हों, ये सभी स्वयं भी प्राकृतिक संसाधन है, तथा ये कहीं पर परोक्ष रूप से, कहीं अपरोक्ष रूप से एक दूसरे के लिए आवश्यक भी हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी हैं।
बिल्कुल।
तथा इनमें मुख्य तौर पे हम ले सकते हैं वायु है, जल है, मिट्टी है, ये सब इतने इन पर पूरे का पूरा प्रकृति का जो है, मतलब पूरा जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो इकोलॉजी है, पूरी इन्हीं पर टिकी हुई है। इनके कोई भी जानवर हो या पशु हो या पौधे हो, इनके मतलब बगैर वो संभव नहीं है।
अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये नेचुरल रिसोर्सेज हमारी जिंदगी में एक अहम रोल अदा करते हैं।
जी।
ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनमें दो प्रकार पाए जाते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। तो आप मुझे बताएंगे कि ये आर्टिफिशियल और नेचुरल में क्या फर्क है?
देखिए, आर्टिफिशियल जैसे जिसको आप सिंथेटिक भी बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल से हमारा मतलब इन उन चीजों का रहता है, उन संसाधनों से रहता है जो हम खुद तैयार करते हैं।
अच्छा।
जैसे पेट्रोलियम है, जैसे पावर हाउसेज हैं, हमारे पावर प्लांट्स हैं, जो प्रकृति में जो स्रोत छिपे हुए हैं उनसे ही, उन्हीं से हम अपने ऊर्जा जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करते हैं। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ हैं, अगर उनके अभाव में आप बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, कोल है, कोल हालांकि प्राकृतिक है, लेकिन उसको हम इस लायक बना लेते हैं जिससे कि वो हमारे दैनिक उपयोग में आ सके। आज तक जो कोयला था, आज तक हम लोग सिर्फ उसका बहुत समय तक इस्तेमाल, उसका सिर्फ हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते रहे, लेकिन आज बहुत सारे सरकार के ऐसे संगठन हैं जो इन प्राकृतिक संसाधनों को आर्टिफिशियल तरीके से मतलब दैनिक प्रयोग में ला रहे हैं, और जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं जिनसे हम बिजली बनाते हैं, तो इस तरह के थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ये जो भी हाइड्रो पावर है, ये सब मतलब आर्टिफिशियल संसाधन है, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, वो आते हैं जिनमें हवा वगैरह है।
अच्छा, आपने बात कही नेचुरल और आर्टिफिशियल की।
जी।
अब हम जब नेचुरल की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जिनको हम इनडेफिनेटली तरीके से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो खत्म हो रहे हैं, मतलब एग्जॉस्ट और इनएग्जॉस्ट।
जी जी, बिल्कुल, मैं इसको आगे बोलने वाला था।
तो आप मुझे उनके बारे में कुछ हमारे लर्नर्स को जानकारी।
देखिए, जैसे मैं अपने लर्नर्स को बताऊंगा कि एग्जॉस्टेबल का मतलब होता है खत्म, जो कभी भी मतलब एक सीमा होती है उनकी, वो कभी भी खत्म हो सकते हैं, और इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं जिसमें सोलर है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर ये खत्म हो जाता तो समझिए सोचना ही असंभव है, मतलब पृथ्वी के संरक्षण के बारे में। विंड है, हवाएं हैं, जो विंड पावर है, रेनफॉल है, ये सब ऐसे रिसोर्सेज हैं, सॉइल है, ये शायद कभी नहीं खत्म हो सकते। लेकिन ये है कि अगर हम लोग, क्योंकि ये प्रकृति को बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, अगर इन पर सावधानी से और अच्छे तरीके से उनका उपयोग नहीं किया गया, तो निश्चित है कि प्रदूषण से पड़ने वाले असर से एक कहीं ना कहीं पूरी पृथ्वी पर असर डालेंगे।
अच्छा, आपने कहा कि सोलर एनर्जी, विंड, रेनफॉल, मगर अगर हम इस वातावरण के साथ ज्यादा छेड़खानी करते हैं, ज्यादा उसमें हम अपनी एक्टिविटीज, मैन मेड एक्टिविटीज जिनको हम कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य, मतलब जो एक्शंस हैं, जो वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस एनवायरमेंट को। हम आए दिन बात करते हैं पेड़ों के लुप्त होने की, हम बात करते हैं उन जंगलों की जो अब अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का शिकार बन चुके हैं। वहां पे आप मतलब उस तरीके से जो लैंड मतलब लैंड को वो जिस तरीके से ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं, तो उसमें काफी चीजें इस तरीके की आ रही। तो आप, मैं आज हम बात कर रहे हैं कि इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो क्या जरूरत आ पड़ी कि आज हमें इनको बचाने की जरूरत है? क्यों हम आए दिन इस तरीके की कैंपेन करते हैं, इस तरीके की प्रोग्राम्स देते हैं कि इनको बचाया जाए? क्या ये इतने मतलब इनका ये थ्रेटेंड लाइन पे है कि अब ये खत्म होने वाले हैं?
देखिए संगीता जी, मैंने आपको पहले ही बोला कि ये हमारे जीवनदायिनी स्रोत है और ये इनके अभाव में हम सोचना भी मुश्किल है। तो ये जरूर हम, मैं कहूंगा कि आपने जैसा कहा कि हमें क्यों गंभीरता से और क्यों इसको बहुत ही सीरियस होकर सोचना चाहिए, बिल्कुल स्वाभाविक है। क्योंकि अगर आप एक बार के लिए मिसाल मान लीजिए, देखिए हम दैनिक जरूरतों में हम बताते हैं, अगर दो दिन हमारे यहाँ पानी नहीं आता तो देखिए कितनी बड़ी समस्या हो जाती। हमें मान लीजिए कहीं कोई दिन ऐसा आ जाए कि हम पानी ना पी पाए, कोई दिन ऐसा आ जाए हम सांस ना ले पाए, हवा ना ले पाए, कोई दिन ऐसा आ जाए कि जिससे कि हमें, इवन मैं यहां तक भी कहूंगा जैसे हम लोग रास्ते में निकलते हैं बहुत धूप दिखती है, जैसे अभी भी हम लोग अभी आ जा रहे होंगे, देखिए कितनी भयानक गर्मी पड़ रही है, हमें एकदम जरूरत पड़ती है एक फ्रेश वायु की, छाओ की, इस तरह से मतलब। तो मेरा ये मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारे लिए बड़े आवश्यक रिसोर्सेज हैं और इनको प्रदूषण से रोकना, इनको प्रदूषित होने से रोकना बहुत जरूरी है बहुत, नहीं तो इसके हमारे को गंभीर परिणाम जो है हम देख भी रहे हैं, आज भी देख रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि हम देखेंगे, हम आज भी देख रहे हैं कि देखिए जैसे ओजोन डिप्लीशन हुआ, ये क्यों हुआ? हमारी वजह से हुआ। और ये आज ग्लोबल वार्मिंग जो आप देख रहे हैं कि मौसम कभी आगे हो रहे हैं कभी पीछे हो रहे हैं, ये कितने खतरनाक लेवल पे हम लोगों ने इनके प्रयोग को, इनके दुरुपयोग से, अपने दुरुपयोग से, इनका अविवेकपूर्ण प्रयोग से, इस्तेमाल से हमने इनको इतने खतरनाक स्थिति में पहुंचा दिया। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा जैसा आपने खुद कहा कि ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ये बहुत आवश्यक है। और हमें, मैं अपने लर्नर्स को यही कहना चाहूंगा क्योंकि वो आने वाली भावी पीढ़ी है, वो भी अपनी तरफ से कोशिशें करें जिससे कि एक बहुत बड़े स्तर पर इन सब चीजों के नुकसान को रोका जा सके।
लर्नर्स, तो हम बात कर रहे हैं नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की, जो कि एक जरूरी मुद्दा है और जरूरी हमारी जरूरत है एक इकोलॉजिकल बैलेंस को, जैसे सर ने बोला कि एक इकोलॉजिकल बैलेंस को जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करे उसके लिए जरूरी है। हमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज को सेव करना जरूरी है, उनको कंजर्व करना जरूरी है, हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को सेव करना जरूरी है, और टू मेक द रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन एंड टू एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस। बहुत ही जरूरी है कि हम अपने इन नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जानें और इनको किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सॉइल के बारे में, क्योंकि सॉइल एक अहम नेचुरल रिसोर्स है, तो सर इसके बारे में आप
देखिए, मृदा जिसे सॉइल, जिसे आप मिट्टी कहते हैं, मृदा, इसको शुद्ध उसमें मृदा बोलते हैं, मृदा प्रधान सॉइल, सॉइल सॉइल जिस पर सारे के सारा, मतलब यूं समझिए जमीन जिसे कहते हैं, जमीन लेयर सॉइल लेयर से बनी होती है, और इसी पर यूं समझिए पूरा का पूरा, मैं तो ये कहूंगा कि पूरा का पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो यहीं से शुरुआत होती है। हालांकि तीनों चीजें ही जरूरी है लेकिन वहां से शुरुआत होती है मृदा जो है। हमें इसके ऊपर भी बड़ी गंभीरता से सोचना होगा क्योंकि मृदा अपरदन होने से आज जिस तरह से कंक्रीट के जंगल, आप देखिए वाटर टेबल जो है वो क्यों खिसकता जा रहा है, रिवर बेड क्यों, रिवर बेड पे क्यों मना किया जाता है, जिससे कि जो वाटर टेबल है, अगर इस मृदा मृदा को हम संरक्षित नहीं करेंगे तो निश्चित है कि इसके भी इससे होने वाले नुकसान से हम बच नहीं पाएंगे। आज जगह जगह कल तक जहां 10 मीटर पे पानी आता था वहां आज 150-200 इतना टेबल जो फुट जो है काफी नीचे चला गया। सरकार इसको लेके बड़ी चिंतित है और देखिए जिस तरह से सरकार ने बहुत सारे एक्शन प्लान बनाती है जिनके द्वारा वो चाहती है कि जनता जो है किसी भी प्रकार के जो इस तरह के जो दुरुपयोग है उसे रोके। मृदा अपरदन जो है जैसे आज जिस तरह से रियल एस्टेट्स बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है ये आज आप कितनी ऊंची बिल्डिंग बना लीजिए कितने हाई राइज बिल्डिंग बना लीजिए लेकिन आप ये पानी कहाँ से लाएंगे। तो हमारे को न सिर्फ वाटर हार्वेस्टिंग सॉयल इरोजन इन सबको रोकना बहुत जरूरी है और सॉयल इरोजन को रोकने के लिए भी बहुत सारे उपाय हमें को करने पड़ेंगे।
अभी हम जब बात कर रहे हैं सॉयल इरोजन की कि इसमें जो रिमूवल ऑफ जैसे सर ने बताया कि रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय विंड एंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, इसके क्या क्या कॉजेज हैं उसमें हमने बात किया है कि नेचुरल एंड मतलब ह्यूमन जनरेटेड कॉजेज, इसमें क्या नेचुरल कॉजेज थे जैसे कि डिफॉरेस्टेशन मतलब जो मैन मेड कॉजेज हैं उसमें डिफॉरेस्टेशन है, पुअर फार्मिंग मेथड्स हैं, ओवर ग्रेजिंग है बाय कैटल्स। तो अब हम इस कंजर्वेशन ऑफ सॉइल की अब हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से इस सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं सॉइल को।
देखिए बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे एक आम आदमी भी न सिर्फ ये सरकार की जिम्मेदारी बल्कि एक आम आदमी भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है और एक छोटी छोटी भूमिकाएं एक बड़ा आंदोलन ले सकती है, एक बड़ा आकार ले सकती है। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे हमें बहुत जिम्मेदारी से मतलब न सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरे विश्व की सुरक्षा के लिए हमारे को छोटे छोटे स्तर पे अगर हम काम करेंगे तो उससे निश्चित है कि बड़े फायदे होंगे। मैं आपको जैसे बताता हूँ कि रिफॉरेस्टेशन
अगर हम एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन की बात करेंगे तो मैं इधर चिपको मूवमेंट को मैं चाहूंगी सर कि आप हमारे लर्नर्स को भी बताइएगा।
जी देखिए चमोली जो उत्तराखंड का अभी नवसृजित जो राज्य हमारे उत्तराखंड का उधर चमोली जिले में एक सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा आंदोलन चला था। आंदोलन नहीं था वो एक सोच थी जो कि सुंदरलाल बहुगुणा जी चाहते थे और उन्होंने ये चाहा कि मतलब इस तरीके से अगर हम पेड़ों को इस तरह से काटेंगे तो निश्चित है पेड़ों भूस्खलन बढ़ेगा, सॉइल इरोजन उससे बढ़ेगा। तो उन्होंने चाहा क्योंकि पेड़ों की बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो पेड़ों की जड़ें जो होती है वो एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है, वो पूरी मिट्टी को एक समेटे रहती है अपने ऊपर और अगर ये तेजी से हम पेड़ हटाते चले जाएंगे तो एक मरुस्थल एक बीहड़ जैसा इलाका जो है वो बनता चला जाएगा। तो सरकार ये बड़ी कोशिश करती है कि इस तरह के योजनाएं चलाए जाएं, एनएसएस के प्रोग्राम्स हैं, एनसीसी के प्रोग्राम्स हैं जहां पे बच्चों को इवन स्कूल के बच्चों को भी इनमें भागीदार बनाया जाता है जिससे कि वो बीज लगाएं और इस तरह की चीजें की जाए। इवन सरकार ने बड़े कड़े दिशा निर्देश भी दे रखे हैं कि इवन आपको मैं बताऊं कि पेड़ काटना एक जुर्म तक भी हो रखा है सरकारी उसमें और सरकार जहां पर भी इस तरह की कोई सीमेंट से जुड़े कोई काम करती है हमने खुद अपने आसपास देखा हुआ है कि पेड़ों के आसपास एक जगह छोड़ दी जाती है जिससे उसमें पानी जा सके। तो ये बड़े इसके दूरगामी फायदे होते हैं मतलब। तो मैं ये कहूंगा कि इसी के साथ साथ जैसे अब नदी के कटाव है वो भी एक सॉइल इरोजन का हिस्सा है। देखिए हम लोगों को अपने संसाधनों का जो अपने प्राकृतिक संसाधन है उनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने के बारे में सोचना होगा। जी
बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने कि किस तरीके से हम सॉइल की सॉइल कंजर्वेशन को मेंटेन कर सकते हैं और कैसे इस सॉइल फर्टिलिटी को बना सकते हैं और जो कि ओवर ग्रेजिंग की मैंने बात की उसको हमें रोकना चाहिए और कुछ ऐसे कृषि मेथड्स को जो फार्मिंग मेथड्स को यूज करना चाहिए जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे। ये तो बात हुई कि जो हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या एफर्ट करते हैं, अब हम बात करेंगे कि इसमें गवर्नमेंट किस तरीके का रोल प्ले करती है, किस तरीके के दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं हमारे को कि हम किस तरीके से इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें और कितना इस्तेमाल करें जिससे कि इनका ओवर कंजम्पशन ना हो, सर मैं जानना चाहूंगी।
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंजर्वेशन, नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कितना, जैसा मैंने पहले बताया कि कितना आवश्यक है और कितना महत्वपूर्ण है, इन पर हम लोग तो करते ही करते हैं, हम लोग अपने अपने स्तर पर सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान उस तरफ भी ले जाना चाहूंगा जो सरकारी जो कोशिशें होती हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सरकार बहुत सारे, आप यूं समझिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तक में ऐसे निर्देश हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जहां पे हम एनवायरमेंटल जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उस पर बोला जाए, किया जाता है। तो सर, हम प्रस्तावना में आप देखिए हमारे भारत देश के संविधान में इस तरह के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि नागरिकों को दिए गए हैं, और हम लोग जिम्मेदारी से इन निर्देशों का को पालन करें और जिससे बहुत फायदे होंगे मतलब। तो लेकिन साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि सरकार ने बहुत सारे ऐसे ऐसे कानून लाए हैं, ऐसे एक्ट लाए हैं जो जो विभिन्न विधान पार्लियामेंट्री या लोकल गवर्नमेंट जो होती हैं वो करती हैं। जैसे 1986 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन आया, क्योंकि फॉरेस्ट जो होते हैं, बायोडाइवर्सिटी, जो बायोस्पीड्स हैं, इस इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था जिसको 1986 में लाया गया था, इसी के साथ साथ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी तक बनाई गई। आज कई राज्यों ने इन चीजों को बड़े अच्छे तरीके से लागू किया है, और वो कई, मैं कई राज्यों के बारे में बोलूंगा, उत्तराखंड जिसमें विशेष है, मतलब जो पूरी तरह से पहाड़ी राज्य है और पूरी तरीके से उसकी पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो फॉरेस्ट और टूरिज्म पे टिकी हुई है, तो उनके लिए तो बड़ा आवश्यक है कि वो इस चीज पे ज्यादा ध्यान दें। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, जिससे कि हम वाइल्ड लाइफ को संरक्षण भी दे सके, जो जिसको संशोधित करके 1991 में लाया गया। साथ ही साथ मैं एक और चीज पे बोलना चाहूंगा कि कंजर्वेशन एजेंसीज, सरकार की बहुत सारी एजेंसीज जो है वो उनका भी अपना एक बहुत सुंदर रोल है, जो कि जिसमें आप मुख्यतः आप ये देखिए कि पेट्रोलियम पदार्थों का संरक्षण इस समय कितना आवश्यक है। मतलब आप देखिए बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर बहुत सारे हमारे रेड लाइट्स हैं, जहां पर काफी काफी बड़ी मात्रा में जो पेट्रोल है उस खराब हो जाता है खड़े खड़े रेड लाइट्स पर। इसी तरीके से सरकार का एक विभाग जो है पेट्रोलियम कंजर्वेशन एंड रिसर्च एजेंसी, जो इस जिसको शॉर्ट में PCRA बोलते हैं, इसका एक बहुत बड़ा रोल है, जो कि पेट्रोलियम पदार्थों को रोकने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। साथ ही साथ सरकार का एक और संगठन जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। देखिए इनका भी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इस बात पर जोर देती है कि हम लोग अपनी ऊर्जा का, अपनी जो इलेक्ट्रिकल पावर जो है उसको हम लोग बेहतरी से इस्तेमाल करें, जिससे कि हम लोग जो हमारी जो थर्मल पावर है, जो हमारी, मैं आपका ध्यान एक और जगह ले जाना चाहूंगा। देखिए बच्चों को मैं ये जानकारी जरूर देना चाहूंगा कि इस समय जो हमारी जो थर्मल पावर कैपेसिटी है वो भी लगभग आप यूं समझिए 1,00,000 MW तक पहुंच गई है। हालांकि 2000 तक जो थर्मल पावर कैपेसिटी थी वो 70,200 MW थी, एक बहुत, जबकि आपको, मैं बच्चों को भी ये देना, जब इंडिपेंडेंस हुआ था हमारे देश को, तब हमारे देश में सिर्फ टोटल जो थी 5,000 MW के आसपास पावर थी, लेकिन आज हम लोग कितना एक असीम मतलब इस चीज में पहुंच गए। हमारी जो हाइडल पावर कैपेसिटी वो भी लगभग 45,800 MW के आसपास है, न्यूक्लियर पावर जो है वो भी हमारी 2,700। तो इस तरीके से देखिए इतनी बड़ी ऊर्जा, और मैं बच्चों को ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि जो नॉन कन्वेंशनल हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे विंड पावर जो कि इम्पोर्टेंट है, वो भी लगभग आज हमारे 3,500 MW के आसपास है। और बायोमास जो पावर प्रोडक्शन है, हालांकि वो कम है, लेकिन सरकार इस दिशा में भी काफी अच्छे से काम कर रही है। तो इसलिए मैं ये अपने लर्नर्स को ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे जो लर्नर्स हैं वो इस चीज को अच्छे ढंग से पढ़ें और इसको बहुत सारे माध्यमों से इस और इन चीजों के बारे में अध्ययन करें। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। साथ ही साथ मैं अपने स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को ये भी बताऊंगा कि जो जो नेचुरल गैसेज हैं, इनके भी प्रयोग पर भी हमें ध्यान देना होगा, जैसे जो जिसमें नेचुरल गैस में हम CNG वगैरह आती है, LPG वगैरह आती है, इनको बड़ा अच्छे से प्रयोग करें जिससे कि हम लोग संरक्षित कर सकें।
तो अभी हम बात कर रहे थे सरकार का जो हमारे लिए दिशा निर्देश है इन यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, बहुत ही अच्छे तरीके से सर आपने हमारे लर्नर्स को बताया कि कौन कौन से ऐसे लॉज हैं, कौन कौन से ऐसी पॉलिसीज हैं जिन पे सरकार हमारे को बता रही है कि कितना लिमिटेड यूज हमें करना है। अब हम बात कर रहे हैं वाटर की, विच इज अ वेरी प्रीशियस रिसोर्स। ये जैसे कि आप जानते हैं कि वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स एंड नेसेसरी फॉर सस्टेनिंग लाइफ, इट रेगुलेट्स क्लाइमेट, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रीज। ये यूज जो अभी आपने जैसे वाटर टेबल आपने अभी बताया कि सॉइल में जो हम बात कर रहे थे, तो ये डिग्रेडेशन ऑफ ये जो वाटर है, क्यों वाटर की क्वालिटी और क्वांटिटी डिक्रीज होती जा रही है, उसके क्या कारण है? क्या केवल पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इसका ये मेन कारण है या मेन कॉज है, या कोई ऐसे भी और कारण है जिनकी वजह से ये जो डिग्रेडेशन आ रहा है वाटर में?
देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, जो डिग्रेडेशन ऑफ वाटर जो आया है उसमें बहुत सारे भूमिका जो इम्पोर्टेंट है जिनको हमारे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। देखिए, ओवर पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है उससे निश्चित है कि हमारे जो हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधनों के स्रोत हैं उन पर बहुत बड़ा दबाव पड़ रहा है और उनका संयमित इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब जैसे अभी हम फिलहाल वाटर की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि डिग्रेडेशन क्यों हुआ पानी का। देखिए, कुल मिलाकर के जमीन पे पानी आता है, वो जमीन पे जो हम तीन तरह के पोल्यूशन जो हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सब मिलकर के एसिड रेन था। एसिड रेन कहाँ गिरेगी? जो धुआं होगा वो फिर जमीन पे आएगा, वो फिर सॉइल पोल्यूशन करेगा। इस तरीके से दूसरा कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, सरकार के अभी दो एक्शन प्लान थे आपने जिनके, गंगा बचाओ आंदोलन, गंगा वाटर क्लीनिंग एक्शन, यमुना एक्शन क्लीन, क्यों आखिर ऐसी जरूरत पड़ी? देखिए, अब अर्बनाइजेशन जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, नगरीकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब अब एक बात बताइए, ये पानी कहाँ जाता है? सरकार को ऐसी कोशिश, सरकार और जो स्थानीय सरकारों को ऐसी कोशिशें करनी चाहिए कि जो हमारी जो जीवन दायिनी नदियां हैं, आज भी आपको पता है दिल्ली के बहुत सारे क्षेत्रों में गंगा जल प्रयोग में होता है, लेकिन कई जगह ऐसा है कि जहां पर कई इंडस्ट्रीज का ऐसा मलबा जो होता है पानी का गंदा, वो गंगा नदी में या यमुना नदी में जाके गिरता है, तो अब वो निश्चित है कि वो डिग्रेडेड पानी को कर रहा है। मैं आपको ध्यान, मैं गोरखपुर के आसपास की कुछ नदियों के बारे में बताता हूँ। पौंड है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। मैं गोरखपुर में एक बीमारी फैली थी, हालांकि वो वायरस वगैरह वो सब पानी से होता है, बैक्टीरिया
वगैरह,
तो मैं आपको एक एंसेफेलाइटिस करके एक बीमारी हुई थी जो पूर्वोत्तर में बहुत भयानक रूप ले चुकी थी, और आज भी अगर हमारे बच्चे प्रोजेक्ट के तौर पे उधर ध्यान दें, एक स्कूली प्रोजेक्ट के तौर पे उसके बारे में पढ़ें, तो वो दंग रह जाएंगे कि हमारे रिसोर्सेज पे कितना दबाव पड़ा हुआ है, और अगर हम इन रिसोर्सेज का अच्छे से प्रयोग नहीं करेंगे तो निश्चित है कि हमें ऐसे नुकसान उठाने पड़ेंगे। तो लेकिन साथ ही साथ अगर हम लोग अच्छे तरीके से इन पानी के कंजर्वेशन ऑफ वाटर, अगर हम इसका प्रयोग अच्छे ढंग से करेंगे तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे वाटर हार्वेस्टिंग है, हम अपने वाटर टेबल, हम ऐसे बच्चे ऐसी चीजें करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, उस पानी को रोकें, उसका इस्तेमाल करें, रीयूज
करें, और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको भी हम रोकें, उसका जो वेस्ट आता है, जो एफ्लुएंट्स होते हैं उनके केमिकल एंड थर्मल पॉल्यूशन जो हम फ्रेश वाटर को होता है उसकी वजह से, उस पर भी रोक लगाना चाहिए। और जो जिस तरीके का सीवेज डंप किया जाता है गंगा या और नदियों में, उनको बकायदा ट्रीटेड, जैसे उसको रिसाइकिल, क्योंकि उसको इतना ट्रीट करके हम उसको डंप करें पानी में कि वो हमारे नदियों को पोल्यूट ना करें। और मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड रिजर्वायर जो होते हैं टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ वाटर टू द फील्ड एज वेल एज एबल टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये बात हुई सॉइल की, वाटर की। अब हम बात करते हैं उन पशु पक्षियों की या उन लोग मतलब उन प्लांट्स और एनिमल्स की जिनके एग्जिस्टेंस पे
जी
आज बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रखा है कि क्या वो जो स्पीशीज आज दिख रही हैं क्या वो कल दिखेंगी, क्या वो ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करेंगी। तो हम जब ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास तो हम टाइप ऑफ प्लांट्स देखते हैं, छोटे से घास से लेके हम बड़े बड़े पौधों की तरफ देखते हैं, और ऐसे ही जो प्राणी हैं जो एनिमल्स हैं हम छोटे से इंसेक्ट से लेके एक ह्यूमन बीइंग से लेके एक बड़े बड़े डायनासोर्स तक की कल्पना करते हैं। मगर इसके बावजूद कि ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो फ्लोरा एंड फौना जो डाइवर्सिटी है, इसमें ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? जैसे अभी मैंने बात किया कि इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस तो है ही, और ऐसी क्या जरूरत है कि हमें इसे कंजर्व करना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी?
देखिए, जैसा आपने कहा कि जो कुछ स्पीशीज जो हैं वो बड़े डेंजर लेवल पे हैं इस समय, मैं अपने बच्चों को कोट करना चाहूंगा, एंडेंजर्ड स्पीशीज आर दोज विच हैव बीन रिड्यूस्ड इन नंबर टू अ क्रिटिकल लेवल एंड फेसिंग अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर। IUCN, बच्चों को इस बार लर्नर्स को मैं बताना चाहूंगा, IUCN एक ऐसी संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये इनके एक रेड डाटा बुक है जिसमें इन्होंने एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में दिया है, और उसमें उन स्पीशीज उन टोरस वगैरह को दिया गया है जो कि खतरनाक लेवल पर पहुंच गए, जिसमें हमारी कंट्री का एशियाटिक लाइन जो है, टॉर्टोइज आप देखिए, टाइगर है, राइनोसीरस जो बंगाल हमारे जो आसाम की जो आप अगर उसको देखेंगे तो एक ऐसा लगता है, मैं आपको लर्नर्स को ध्यान देना चाहूंगा कि ऐसा लगता है जैसे कि वो पूरा शस्त्र वस्त्र पहना हुआ है, मतलब पूरी लोहे की बॉडी लगती है उसकी।
हाँ, बिल्कुल,
इतना सुंदर सा लगता है, लेकिन बड़ा उसको देखते हुए बड़ा दया सी भी आती है कि अगर हम लोगों ने ऐसी चीजें नहीं अपनाई तो निश्चित है कि हम उसको ज्यादा समय तक नहीं देख पाएंगे। उन्हीं में एक हमारे एशियाटिक एलिफेंट भी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बच्चों को लर्नर्स को बताना चाहूँ, इतना सुंदर मतलब वो है। इसी तरीके से ये सब हमारे एनिमल्स वगैरह हैं, एनिमल एंड पक्षी वगैरह, और इन्हीं में इसी के साथ साथ में प्लांट्स जो पौधे जो है, आपको बच्चों ने अगर लर्नर्स ने हमारे फोटोज वगैरह देखी होंगी, अगर वो गूगल पे जाकर के इमेजेस देखें, पिक्चर प्लांट जो है एक इतना सुंदर प्लांट है, और उसकी गतिविधियां देखेंगे तो आप कहेंगे कि अरे ये तो पूरा एनिमल लगता है, छोटा मोटा एनिमल। वो क्या करता है, वो एक एनिमल की तरह सोचता है। मैं आपको बताऊं, उसका सुराईदार जो शरीर होता है नीचे से लेकर लंबा सा सिलेंड्रिकल होता है, और उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है एक पेड़ होते हुए, और जैसे ही कोई इंसेक्ट उसके आसपास गुजरता है या कुछ होता है तो एकदम उसका जो ढक्कन है वो उसको बंद कर देता है। तो मैंने ये पिक्चर प्लांट है। इसी तरह से ऑर्चिड्स भी हैं, नीलगिरी लिलीज हैं, तो इस तरीके से
और इन मेरे ख्याल से इन प्लांट्स की जैसे आपने बात की जैसे इनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू तो है ही
जी,
मगर जो इनकी मेडिसिनल वैल्यू है
जी,
वो भी
बिल्कुल 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 आपने सही कहा। मैं मेडिसिनल पे स्किप कर गया, बहुत सारे ऐसी मेडिसिन थी जो कि आप ये जो आज जो दवाइयां आप देख रहे हैं, कल तक शायद इनकी जरूरत थी ही नहीं। हम आज ही नहीं, पुराने जमाने से लेकर के आज तक जड़ी बूटियों से ही इलाज होता था, वो तो आज इस्तेमाल होने लगी है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी जड़ी बूटियां लगभग लुप्त भी हो चुकी हैं, और बहुत सारी जड़ी बूटियां लुप्त होने के कगार पे हैं।
जी निष्काम जी, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगी, अभी संगमित्रा जी ने एक टर्म इस्तेमाल की, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस
जी,
ये क्या है, ये हमारे शिक्षार्थियों को आप बताएं। और इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल हम बहुत सुन रहे हैं और इस पर सम्मेलन भी कई आयोजित हो रहे हैं, बायोडायवर्सिटी
जी,
जैव विविधता, ये क्या है?
देखिये, मैं बायोडायवर्सिटी बिल्कुल मैं लर्नर्स को कोट करना चाहूंगा, बायोडायवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज ए, इट्स अ वेरी सिंपल टर्म, इट्स डिफाइंड एज ए फ्लोरा एंड फौना।
वैरायटी ऑफ ऑल
फ्लोरा एंड फौना
जी, एनिमल्स एंड प्लांट्स। दैट्स,
जैसे अभी हम बात कर रहे थे सीमा जी, अभी आपने सुना होगा कि बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस की जो बात सर ने कही कि अगर ये जो प्राण जो एनिमल्स हैं, जो जो जैसे अभी डायनासोर्स की बात कर रहे थे हम लोग, कि अगर ये लोग लुप्त हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे मतलब जो इनका रोल है हमारे एनवायरमेंट में वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा, और जो एक्टिविटी वो उस एनवायरमेंट में उस बायोस्फेयर में कर रहे थे अगर उनके लुप्त होने से वो एक्टिविटी वहां से खाली हो जाएगी तो वो किसी और के द्वारा की जाएगी, तो दैट मींस कि वो डिसबैलेंस होगा। इन लाइक इन आर केस ऑल्सो कि जब हम जैसे परिवार के हम सदस्य होते हैं, हम सभी में एक कार्य बटा हुआ है कि आप ऐसा करेंगे हम ऐसा करेंगे, जैसे मदर है हमारी घर में खाना पकाएंगी और पिताजी हमारे सर्विस करेंगे और वो पैसा लेके आएंगे, भाई हमारे ये करेंगे पढ़ाई करेंगे। अब इनमें से अगर कोई इंसान आपके घर से चला जाता है, मान लीजिए कहीं चला गया, जब हमारी मदर कहीं चली जाती है तब वो जो खाना बनाने वाली जो प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब हो रही है, आपको खाना टाइम से नहीं मिल रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, तो क्या हुआ, वो घर का एक बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, वो एक्टिविटीज जो थी जो मदर के द्वारा की जा रही थी वो डिस्टर्ब हो गई। तो यही केस है, क्योंकि बायोस्फेयर इज ऑल्सो अ लाइक ऑफ आर फैमिली, मतलब एक एनवायरमेंट है पूरा वातावरण, मेरा भी रोल है इसमें, मैं कार्बन डाइऑक्साइड दे रही हूं, मैं ऑक्सीजन ले रही हूं, अगर हम ह्यूमन बीइंग हम गायब हो जाए तो ऐसे ही पूरा बैलेंस ही खराब हो जाएगा। जैसे अभी बात हो रही थी बायोडाइवर्सिटी की, तो कौन कौन सी ऐसी थ्रेट्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी को हमारे मतलब डिस्टर्ब कर रही हैं, मैं जानना चाहूंगी कि क्या क्या ऐसे थ्रेट्स हमें मिल रहे हैं, कि जैसे आप डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट बाय कटिंग डाउन ट्रीज, मतलब डिफॉरेस्टेशन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अर्बनाइजेशन एंड पॉल्यूशन, तो आप मतलब हमने अभी ये इन्हीं सब चीजों को पीछे भी डिस्कस किया कि ये कुछ एक कारण है जो हमारे द्वारा हम कर रहे हैं और उसकी वजह से हम पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपने एंडेंजर्ड स्पीशीज की भी बात की कि वो एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन होती है, क्या होती है। अब हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ की, तो वाइल्ड लाइफ में आपने हमें बताया सर कि कुछ ऐसे एक्ट्स भी
जी बिल्कुल
सरकार ने दिए, मैं चाहूंगी उन एक्ट्स को आप अगर दोबारा हमारे लर्नर्स को बताएं जिससे कि उन्हें ये पता चले कि किस तरीके के प्रोग्राम्स गवर्नमेंट अपनी तरफ से करती है और किस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस हैं और जिनका असर हमारे को पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं ये भी जानती हूं कि हमारे लॉज ये एक्ट्स कहीं किताबों तक सीमित ना रह जाएं, क्योंकि उनको इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। क्या वाकई ही उस लेवल पे इतना काम होता है?
देखिए मैं अपने लर्नर्स को एक बार दोबारा अपनी एक बात को जरूर कहना चाहूंगा कि वो इस प्रोग्राम के बाद वो जहां से भी ऐसे हो सके हमारे देश का जो हमारे देश का संविधान है उस पर एक बार ध्यान देखें और उस पर एक बार डायरेक्ट एक बार इस कार्यक्रम के बाद वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ें, जिससे उन्हें बड़ी खुशी होगी कि तुरंत उनका वो देखेंगे कि हमारा संविधान कितना परिपक्व है और कितना सुंदरता से बनाया गया, जिसमें अधिकारियों को नागरिकों को दिशा दी गई है, एक उनके भी अधिकार हैं, उनके भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं कि वो अपने जो वातावरण है उसको बढ़िया रखें।
टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड हाउ वी हैव मैनिपुलेटेड द एग्जिस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज यूजिंग द एडवांस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू क्रिएट आवर ओन एनवायरमेंट, दस इन द प्रोसेस ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वी हैव नॉट ओनली चेंज द नेचुरल एनवायरमेंट बट इन सम केसेज डिस्ट्रॉयड इट। The modern industries, factories, cities, towns, roads, railways, dams have replaced the natural habitat of plants and animals. Thus, the natural resources are depleting gradually and a day will come when most of these will not be available for our future generation. So it is high time to think about maintaining a balance between environment and development so that both present and future generation can derive proper benefit out of these resources. This can only be achieved by the process of sustainable development. اب ہم بات کریں گے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی. سر بتائیے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کیا مطلب ہے کہ ہم سسٹین, ابھی جیسے میں نے بولا بھی, میں جاننا چاہوں, اپنے لرنرز کے لیے جاننا چاہوں گی کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ایگزیکٹلی ہم اس کو کیسے ڈیفائن کریں.
بالکل, دیکھیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سے ہمارا مطلب تاتپریہ, میں اپنے لرنرز کو ہی بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے, جو ہم نے اتنی ساری ایک اتنے گمبھیر وشے پر چرچا کی اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہم لوگ بہت, ہم لوگوں نے جو جس طرح سے ایسی استھتی کھڑی کر دی جیسے کہ پورا جیسے کہتے ہیں ریسورسز کو ہم نے ایک خطرناک استھتی میں پہنچا دیا ہے, سارے نیچرل ریسورسز کو. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی پریبھاشا اگر اس کے بارے میں بتائیں تو ہم اپنے سنسادنوں کا پریوگ آج اس پرکار سے کریں کہ وہ بچیں, سرکشت رہیں اور کل کے لیے بھی ہم اس کو, آنے والی پیڑھی کو اسی اوستھا میں, اچھی اوستھا میں ان کو دے سکیں, جس سے کہ وہ بھی اس کا پریوگ کریں اور وہ بھی آگے اس کو دیں. اس کو اسے بولتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. ہم اپنے سبھی جس پرکار کی ہماری سویدھائیں ہیں, ہمارے چاہے وہ کوئی پاور ہو, الیکٹریسٹی ہو, سولر ہو, جو بھی ہمارے کو آج مل رہا ہے وہ ہم اس طرح سے ان کا اپیوگ کریں کہ وہ ہماری پیڑھی کو ملے, اس کو بولتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. اور میں آپ اپنے لرنرس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر پولوشن پہ بھی چرچا ہوتی ہے, کنزرویشن پہ بھی چرچا ہوتی ہے, اگر کوئی ایک چیز, کوئی ایک تکنیک اگر ہم کہیں, آپ اسے ایک تکنیک بھی کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کوئی بھی اگر کسی چیز کو ہم کہیں, تو میں کہوں گا کہ اگر ہم کوئی واقعے میں اس کا پورا, ان پوری سمسیاؤں کو ندان کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف ماتر ایک اس شبد کے ارتھ کو سمجھنا بہت آوشیک ہے, یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, ستت وکاس. تو یہ بہت آوشیک ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی سنسادن ہیں ان کو وویک پورن طریقے سے, جوڈیشیسلی ان کو استعمال کریں, اور اس سے ہم بہت ساری, جسے کہتے ہیں کہ ایک ہتھیار سے ہم بہت ساری چیزیں, اپنی ساری سمسیاؤں کا حل کر سکتے ہیں.
تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ از دا ڈیولپمنٹ دیٹ میٹس دا نیڈ آف دا پریزنٹ جنریشن اینڈ کنزرو اٹ فار فیوچر جنریشن. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں جیسے ابھی سر نے بتایا کہ ہم اس کا ستت وکاس, آپ نے ہندی میں اس کا جو ڈیفینیشن دیا ہے, اٹس اباؤٹ ریڈیوسنگ ایکسیسو یوز آف ریسورسز اینڈ انہانسنگ ریسورس کنزرویشن, ریسائکلنگ اینڈ ری یوز آف ویسٹ مٹیریل. اس کے لیے سرکار بھی بہت اہم قدم اٹھا رہی ہے. تو
اور میں آپ کو یہ اپنے لرنرس کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے آپ اپنے جو آپ کے اسکول کی کتابیں وہ تو آپ پڑھیے, آج دیکھیے کتنے سندر سادھن ہے ہمارے پاس, انٹرنیٹ ہے, اس کتنا اچھے سادھن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لرنرس بڑے طریقے سے اور وشال کائے طریقے سے اور وشالتا کے ساتھ ان سبھی وشیوں کو پڑھیں اور پوری روچی کے ساتھ پڑھیں, جس سے کہ وہ نہ صرف یہ صرف ایک پرشن تک ہی سیمت نہ رہے, وہ ہماری جیون شیلی میں بھی آئیں, ہم ہی چاہتے ہیں.
تو نشکام جی, آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمیں بتایا کہ ہم کس طریقے سے ان ریسورسز کو کنزرو کر سکتے ہیں, جل, پرتھوی, مٹی, اور ان سب کو کس طریقے سے ہم سسٹین, اس کا سسٹین کریں اس طریقے سے. اب ہم بات کریں گے انرجی ریسورسز کی. ابھی وی ہیو آلویز بین یوزنگ ڈفرنٹ فارم آف انرجی آبٹین فرام ویریس سورسز فار آر ڈیلی ایکٹیویٹی لائک کوکنگ, ہیٹنگ, پلگنگ اینڈ ٹرانسپورٹیشن اینڈ لائٹنگ. فار ایگزامپل, ہیٹ انرجی ریکوائرڈ فار کوکنگ پرپز از آبٹین فرام فائر ووڈ, کیروسین آئل, کول, الیکٹریسٹی اور کوکنگ گیس, ایل پی جی. We use animal power for transportation and for running minor mechanical devices like the Persian wheel for irrigation or for running a kohlu for extracting oil from oil seeds. Different form of these energy are obtained from various resources. We will now discuss about these energy resources in detail. Jaise sir aap Power India Group magazine se hain, to کیونکہ آپ ہمیں بہتر طریقے سے ان ریسورسز کے ٹائپس بتا سکتے ہیں, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے ڈفرینٹ ٹائپس آف انرجی ہیں اور کیسے ہم ان کو کنزرو کرنا چاہیے اور کیسے ان کا یوٹیلائزیشن ہونا چاہیے.
دیکھیے انرجی ریسورسز جو ہیں براڈلی ڈیوائڈیڈ انٹو two especially divisions, conventional and non-conventional energy. तो कन्वेंशनल, जैसे कन्वेंशनल का मतलब होता है कि पारंपरिक, पारंपरिक ऊर्जा, पारंपरिक ऊर्जा यानी कि जो अभी तक इस्तेमाल होती रही, जैसे लकड़ी है, फायरवुड है, कोल है, बायोमास है, जो अभी तक जैसे कोयला था, वो सब पारंपरिक ऊर्जा थी जो कि जिसमें गैसेस वगैरह भी, लेकिन अब जिसको हम फॉसिल फ्यूल से क्रिएट होती, जिसमें प्लांट्स हैं उनसे बनती, जो एनिमल से जो गैस वगैरह जो सड़े गले इनसे जो बनी, जैसे उसमें ऑयल वगैरह निकला, गैस निकली, तो इनको हम बोलते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज। और दूसरे जो रिसोर्सेज होती है वो होती है गैर पारंपरिक, जो कि मतलब इस्तेमाल होती है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जिसमें हमने पूरी तरीके से हमने इनका अतीत में तो प्रयोग नहीं किया था, लेकिन आज हम इसको सोलर पावर, आज देखिए आज कितनी भयानक गर्मी पड़ रही है, अगर हम इसका उपयोग करें तो पता नहीं कितनी हजारों मेगावाट जो है बिजली आज पूरे देश में, ग्लोबल वार्मिंग या और अन्य कारणों की वजह से पूरे देश में गर्मी हो रखी है, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मुख्य हमारे देश में जो मुख्य तौर पर जो ऊर्जा का प्रयोग होता है वो है थर्मल पावर प्लांट। हमारे सबसे ज्यादा लगभग 150 के करीब हमारे देश में सरकारी थर्मल पावर प्लांट है, जो जिनको TPP बोलते हैं, इनको थर्मल पावर प्लांट, सबसे ज्यादा बिजली इन्हीं से बनाई जाती है। लगभग इसकी जो अंदाजन जो है अप्रोक्सीमेट लगभग 100,000 मेगावाट जो है, हालांकि 2000 के आंकड़ों के अनुसार 70,200 मेगावाट है, लेकिन अब काफी फर्क आ चुका है। लगभग थर्मल पावर से ही हमारे देश में 100,000 मेगा से ऊपर, 1,45,000 के आसपास मेगावाट बिजली बनाई जाती है। हाइडल यानी हाइड्रो पावर, ये नदियों को बांध बना करके रोक करके ये बनाई जाती है, ये दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ऊर्जा स्रोत ऊर्जा देने वाली वो है। न्यूक्लियर इसके बाद आती है, न्यूक्लियर जो यूरेनियम और थोरियम से बनती है, और उसके आज हमारे देश में जो सबसे खूबसूरत विश्व में भी बल्कि मैं आपको बताऊं, विंड पावर। विंड पावर का उपयोग अगर हमारे लर्नर्स जो है उसको वो ध्यान से देखें, विंड पावर जो है बहुत अच्छे तरीके से उपयोग में लाई जा रही है।
आपने जब विंड एनर्जी की बात की तो हम एक पवन चक्की की बात करते हैं, जो हमें शायद स्कूल लेवल्स में, सीमा जी शायद इस बात से आप भी सहमत होंगी कि हमें बनाने के लिए कहा जाता था, और वो बड़े ही उसका एक असर दिखता था, वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो उसी मोमेंट तैयार होता था और आप उसके प्रभाव को देख सकते थे कि किस तरीके से विंड एनर्जी हम वो करते हैं। हाँ सर, आगे
मैं आपको बताऊँ, विंड जो विंड पावर जो विंड प्लांट होता है, विंड फार्मिंग के जो प्लांट होते हैं, आप देखिए कितने खूबसूरत से लगते हैं, मंदिर से, मैं ये कहूंगा मंदिर अपनी जगह, लेकिन बड़े आकर्षक से लगते हैं, बड़े सुंदर से लगते हैं जब वो घूमते हैं। और साथ ही साथ अब ये आप हमारे कई हिंदी के सीरियल वगैरह में भी आप देखते हैं, लापतागंज बच्चे हमारे लर्नर्स देखते होंगे तो उसमें पवन चक्की दिखाते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊं कि इस तरह से नहीं देखिए, बड़ा अच्छा सा लगता है इन सब चीजों को देखने, विंड पावर जो है। और आपको बताएं, हमारे देश की एक बहुत बड़ी, हमारे देश की एक कंपनी जो आज इस क्षेत्र में विश्व अग्रणी कंपनी बन गई, जो सुजलॉन, वो उसके लगभग लगभग 40 उसमें उनका 40 देशों में इनका लगभग 40 देशों में इनका ऑपरेशन है। तो इस तरीके से, और बायोमास जो है,
विंड पावर, आपने पवन चक्की का नाम लिया, उसके बहुत सारे हम उदाहरण भी देखते थे, और कभी हमें जब बताया जाता था तो उस एक्सपेरिमेंट को हम तुरंत निष्कामची उस टाइम पर कर भी देख लिया करते थे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम उसको उसके रूप को देखते हैं तो बड़ा ही आकर्षक लगता है, बहुत ही देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आजकल हम सोलर एनर्जी का भी काफी यूज कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए आने वाले सरकार के बहुत सारे कदम, अगर मैं आपको आप वेबसाइट वगैरह पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर या सरकार का एक विभाग
जी
एक मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, वो उसका उसका तो पूरा ही केंद्र जो है वो सोलर पावर पे ही है। हालांकि वो विंड पावर में भी बहुत बड़ा भूमिका अदा करते हैं, लेकिन अभी आप पिछले बजटों में आप देखें सरकार के केंद्रीय बजटों में तो आप देखेंगे उसमें जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन, सरकार का जो लक्ष्य है वो ये चाहती है कि सोलर ऊर्जा में की टारगेट उन्होंने लक्ष्य तय किए और वो बड़े पैमाने पर इसके लिए काम करना चाहते हैं। और ये बिल्कुल विंड पावर की तरह बिल्कुल क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज है और ये कभी भी खत्म नहीं होगा। और हम चाहते हैं कि सरकार, मतलब जो हमारे लर्नर्स हैं, वो भी इस पर ज्यादा ध्यान से पढ़ें इसको, और निश्चित है कि उन्हें लाभ होगा।
तो हम जब बात कर रहे हैं एनर्जी की, तो हम कुछ ऐसे नेचुरल चीजों की भी बात करना चाहेंगे जो नेचुरल। अनदर फॉर्म ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इज बायोगैस। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑन कैटल डंग इन अ स्पेशली डिजाइन टैंक कॉल्ड डाइजेस्टर। अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड कैटल डंग इज पोर्ड इन टू दिस डाइजेस्टर वेयर एन एरोबिक डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस एंड बायोगैस इज जनरेटेड। दिस गैस कंटेन्स approximately 55 to 70% methane and which is inflammable and it is generally used as cooking gas and for generation of electricity. The waste left in the tank after the generation of biogas is used as manure and thus biogas plant provides us both the fuel and the manure. Biogas plants are becoming very popular in rural India. Now biofuel is you know it very well that fossil fuel have been the main source of energy for transportation and industries for more than a century. Their rapid consumption has depleted the reserve of fossil fuel. Their fast depletion and non-renewable nature has sent an alarm to look for alternative fuel. Sir, biofuel ke bare mein kuch
dekhiye, jaisa aapne isme biofuel ke bare mein dekha, तो उसमें तो बिल्कुल क्लियर ही है।
क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं इनके बायोडीजल या बायोफ्यूल्स के?
देखिए, बायोफ्यूल जो है, आप समझ रही हैं कि बायोफ्यूल से जैसे डंग वगैरह जो होते हैं इन्हीं का वो होता है, और बायोडीजल जो है हैज सेवरल एडवांटेज, सम ऑफ देम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कोटेड, इट इज एन एग्रीकल्चरल बेस्ड फ्यूल सब्स्टिट्यूट और इट कैन बी मेड फ्रॉम बोथ वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फीड्स एंड इट कैन बी यूज्ड विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन इन चेंजेस। और इसमें इट डज नॉट नीड सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज एंड डिलीवरी। हैंडलिंग बायोडीजल इज ट्रूली सेफर। और प्लांटिंग ऑफ जेट्रोफा, जेट्रोफा के बारे में आप लोग बहुत, हमारे आजकल बहुत चर्चा का विषय रहता है। जेट्रोफा सर्कस will utilize wasteland in our country. तो जेट्रोफा से बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं जिससे कि आने वाले समय में ये शायद बायोफ्यूल बन सकता है, मतलब, और अभी तक ये एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं इस पर। इट इज एडवांटेज एज फार एज एडवांटेजेस ऑफ बायोडीजल इज कंसर्न, इट इज कम्बस्टन एमिट्स लेस कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फेट्स अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड पर्टिकुलेट मैटर दस रिड्यूसेस एयर पॉल्यूशन। और जो कंजर्वेशन जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनके बारे में मैं, आप जैसा कि आपने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड दे आर यूजफुल टू अस। नाउ यू थिंक अबाउट योर डेली एक्टिविटीज एंड द टाइप्स ऑफ एनर्जी यू आर यूजिंग इन ईच एक्टिविटी। तो विच प्रोड्यूसेस दीज एनर्जीज, एवरीबडी एवरी डे यू एंड योर फैमिली मेंबर्स आर यूजिंग 4 to 5 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। Similarly, industries and different establishments are using energy every day. The demand for energy is increasing day by day. So, इसी तरह से हम लोग जो बहुत सारे resources हैं उनको इस्तेमाल करते हैं।
ये बात हुई हमारे conservation of natural resources की। हमने इसमें बात चर्चा की वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी की, मतलब हमने बात किया इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। अब कुछ जैसे हमने इन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को हमने दो पार्ट्स में बांटा था कि एक सी टू कंजर्वेशन और एक इन सी टू कंजर्वेशन। इन सी टू कंजर्वेशन जिसमें हम लेबोरेटरीज में इनको या मतलब उनको जीन बैंक्स बना के हम उनको सेव करते हैं, और एक है एक सी टू कंजर्वेशन जिसमें हम उनको नेचुरल एनवायरमेंट में कंजर्व करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कुछ वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, क्योंकि हमारे पास समय की कमी के देखते हुए मैं सर से कुछ वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं उनके बारे में बात करना।
देखिए, जैसे मैंने, हम लोगों ने चर्चा कर रही थी कि सरकार के बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारी जागरूकता है जिससे कि ये सब हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं, इन्हीं पे आगे चलते हुए आज हमारे देश में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं जिसमें हमारे लर्नर्स ये सब पढ़े इनके बारे में। काजीरंगा है, नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, गिर लॉयन नेशनल पार्क है जिसके बारे में आपने देखते होंगे, बांदीपुर है, पेरियार है, कान्हा नेशनल पार्क है, बायो रिजर्व है, इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी बॉटनिकल गार्डन्स हैं जहाँ पे इन सब चीजों को कंजर्व किया जाता है, मतलब बढ़िया।
अब समय की कमी को देखते हुए हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने एक्सपर्ट मिस्टर निष्काम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू आवर लर्नर्स।